चिकित्सालय का कमरा शांत था। दीवारों पर लगी जड़ी बूटियों की छाया दीपक की लौ के साथ हिल रही थी। बाहर शाम उतर चुकी थी। आकाश के रंग पत्थर की खिड़की से भीतर झर रहे थे। अर्जुन आधा उठकर बैठा था। पसलियों में अभी भी दर्द था। सांस गहरी लेने पर खिंचाव उठता, पर भीतर मूलाधार के पास की रेखा स्थिर थी। दरवाजे के बाहर कदमों की धीमी मापी हुई आहट सुनाई दी। ये साधारण शिष्य की चाल नहीं थी, यह नियंत्रित थी, न भारी न हल्की। दरवाजा पूरी तरह खुला, तीन व्यक्ति भीतर आए। बीच में आचार्य ध्रुव, सफेद दाढ़ी, लंबा दुबला शरीर, आंखें ऐसी जैसे पत्थर के भीतर जमी हुई अग्नि। उनकी उपस्थिति कमरे की हवा बदल देती थी। दो अन्य वरिष्ठ शिष्य पीछे खड़े रहे। अर्जुन ने धीरे से सिर झुकाया। आचार्य ध्रुव उसके पास आए, कुछ क्षण बिना बोले उसे देखते रहे, फिर बोले, तू खड़ा हो सकता है। आवाज कठोर नहीं थी, पर उसमें परीक्षण था। अर्जुन ने पलंग का सहारा लिया, धीरे से उठा। पसलियों में दर्द उठा, पर उसने उसे चेहरे पर नहीं आने दिया। आचार्य की आंखें उसकी सांस पर टिक गईं। गहरी श्वास ले, उन्होंने कहा। अर्जुन ने लिया, छोड़, उसने छोड़ा। आचार्य ने अपनी दो उंगलियां उसके नाभि के नीचे रखी। स्पर्श हल्का था, पर जैसे ही उंगलियां त्वचा से लगीं, अर्जुन ने भीतर एक हल्का कंपन महसूस किया, जैसे कोई उसकी नाड़ियों के भीतर उतर रहा हो। आचार्य की आंखें बंद थीं। कमरे में मौन छा गया। अर्जुन ने सावधानी से भीतर की काली बूंद को और गहराई में स्थिर किया। रेखा शांत, अग्नि सुप्त। कुछ क्षण बाद आचार्य की भौहें हल्की सिकुड़ी। उन्होंने उंगलियां हटाई, फिर अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार स्पर्श भारी था, जैसे वजन रख दिया गया हो। अद्भुत, उन्होंने बहुत धीमे कहा। पीछे खड़े दोनों शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। तूने आज अखाड़े में क्या किया, आचार्य ने सीधे पूछा। अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा। प्रतिक्रिया, उसने कहा। प्रतिक्रिया से हड्डियां नहीं टूटती, आचार्य का स्वर ठंडा हुआ। बल चाहिए, मौन, अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। आचार्य उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमे। तीन दिन पहले तक, उन्होंने कहा, तेरी नाड़ियां सूखी थीं, मूलाधार बंद, प्रवाह टूटा हुआ। वे उसके सामने आकर रुके। आज उनकी दृष्टि पैनी हो गई। आज वहां हलचल है, कमरे की हवा भारी हो गई। अर्जुन ने श्वास नियंत्रित रखी। क्या तूने किसी से कुछ सीखा, आचार्य ने पूछा। नहीं। किसी ने तुझे कुछ दिया? नहीं। तो फिर, आचार्य ने एक एक शब्द पर बल देते हुए कहा, यह परिवर्तन कैसे हुआ? कुछ क्षण, अर्जुन ने सीधा उत्तर दिया, जीवित रहने की इच्छा। आचार्य की आंखों में हल्की चमक आई। वे कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने पीछे खड़े शिष्यों को संकेत किया, वे बाहर चले गए। कमरा अब लगभग खाली था। आचार्य ध्रुव उसके निकट आए। सुन अर्जुन, उनका स्वर अब धीमा था, आज जो हुआ वह केवल अखाड़े की बात नहीं है। अर्जुन चुप। वीरेंद्र, आचार्य ने कहा, साधारण शिष्य नहीं है। वे रुके, उसका परिवार इस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली कुल है, भूमि, धन, योद्धा, सब उनके पास है। अर्जुन ने पहली बार हल्की भौं उठाई। आचार्य ने स्पष्ट कहा, वो कुल पराजय सहन नहीं करता। कमरे में दीपक की लौका भी। आज तूने केवल उसे नहीं हराया, आचार्य बोले, तूने उनके अभिमान को चोट पहुंचाई है। अर्जुन के भीतर कुछ स्थिर रहा, तो उसने शांत स्वर में पूछा। आचार्य की आंखें कठोर हो गईं, तो अब तू लक्ष्य है। मौन, वे प्रत्यक्ष कुछ नहीं करेंगे, आचार्य ने आगे कहा, गुरुकुल की मर्यादा है, पर, उन्होंने थोड़ा झुककर कहा, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अभ्यास में चूक, रात में आक्रमण, वन प्रशिक्षण में गायब होना। अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। तू अभी दुर्बल है, आचार्य ने स्पष्ट कहा, आज जो हुआ वह विस्फोट था, पर तेरी देह उसे सहन नहीं कर पाएगी बार बार। उन्होंने सीधा आदेश दिया, जब तक मैं अनुमति न दूं, तू गुरुकुल से बाहर नहीं जाएगा। वन प्रशिक्षण में नहीं, नगर में नहीं, अकेला नहीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, यदि वे भीतर आए? आचार्य की आंखों में क्षण भर के लिए कुछ अलग झलका। तब उन्होंने कहा, तुझे स्वयं को बचाना होगा। कमरे में लंबा मौन। फिर आचार्य ध्रुव ने अंतिम बार उसकी नाभि के नीचे देखा। बहुत धीमे बोले, और जो तू भीतर छिपा रहा है। अर्जुन का हृदय एक धड़कन के लिए रुका। उसे नियंत्रित करना सीख, क्योंकि यदि वो अनियंत्रित हुआ तो तेरा शत्रु बाहर नहीं होगा। वे मुड़े, दरवाजे तक पहुंचे, फिर बिना उसकी ओर देखे कहा, वीरेंद्र का परिवार तीन दिन में यहां संदेश भेजेगा, तैयार रह। दरवाजा बंद हो गया, कमरा फिर शांत। अर्जुन पलंग पर बैठ गया, धीरे धीरे सांस ली। भीतर मूलाधार की रेखा हल्की धड़क रही थी, और पहली बार उसे स्पष्ट अनुभव हुआ, काली अग्नि केवल शक्ति नहीं है, वो भूखी है। आंडस को आचार्य ध्रुव के जाते हुए कदमों की आहट धीरे धीरे गलियारे में खो गई। अर्जुन कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखता रहा, मानो उस चौखट से अभी भी कोई अदृश्य दृष्टि उसे परख रही हो। फिर उसकी आंखें ऊपर उठी, पत्थर की छत, उस पर समय के दाग, हल्की दरारें, मकड़ी के जाले जो दीपक की मध्यम लौ में चांदी जैसे चमक रहे थे। शरीर थका था, मन भारी, पर भीतर की काली अग्नि स्थिर। उसने एक लंबी सांस ली, पसलियों में दर्द उठा, पर पहले जितना तीखा नहीं। वो छत को देखता रहा, सोचते सोचते नहीं, बस देखता रहा। और उसे पता भी नहीं चला कब उसकी पलकें भारी हुई, कब दृष्टि धुंधली हुई और कब अंधकार ने उसे घेर लिया। अगली बार जब उसने आंखें खोली, कमरा शांत नहीं था। धीमी धीमी आवाजें, किसी बच्चे के रोने की, किसी वृद्ध के खांसने की, औषधियों की गंध पहले से अधिक गहरी थी। सूरज की रोशनी पत्थर की खिड़की से भीतर आ रही थी। अर्जुन ने सिर थोड़ा मोड़ा। चिकित्सा कक्ष अब व्यस्त था। पलकों पर कई लोग लेटे थे, कुछ शिष्य, कुछ नगर के लोग। कोई हाथ पर पट्टी बंधवाए बैठा था, किसी के सिर पर पट्टी, कोई वैद्य से प्रश्न कर रहा था। गुरुकुल का चिकित्सा केंद्र केवल शिष्यों के लिए नहीं था, ये पूरे नगर के लिए खुला था। इसी से गुरुकुल को आय भी होती थी और यहीं पर चिकित्सा विद्या के छात्र अपनी परीक्षा देते थे। औषध बनाना, नाड़ी देखना, घाव बांधना, सब यहीं सीखा जाता। अर्जुन ने धीरे से उठने की कोशिश की। उसी समय एक गहरी स्थिर आवाज उसके पास आए, जाग गए। वह थे चिकित्सा गुरुदेव। गंभीर चेहरा, मध्यम आयु, माथे पर हल्की रेखाएं, आंखों में थकान नहीं बल्कि सतत निरीक्षण। वे एक शिष्य को निर्देश देकर उसके पास आए। बैठ सकते हो, उन्होंने पूछा। हाँ, अर्जुन ने धीमे कहा। गुरुदेव ने उसकी कलाई पकड़ी, नाड़ी देखी, कुछ क्षण आंखें बंद रखी, फिर उसके सीने पर हल्का दबाव डाला, पसलियों के पास। दर्द उठा, अर्जुन की सांस हल्की अटक गई। गुरुदेव ने ध्यान से देखा, दाहिनी ओर दो पसलियों में सूक्ष्म सूजन है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। पूरा भंग नहीं, विश्राम से ठीक हो जाएंगी। उन्होंने उसकी पीठ के पुराने घावों की भी जांच की, पुराने निशान बहुत हैं, उन्होंने धीरे से कहा, पर शरीर का पुनर्निर्माण तेज है। उन्होंने एक शिष्य को संकेत किया, वह ताड़पत्र और कलम लेकर आया। गुरुदेव ने कुछ औषधियां लिखी, अश्वगंधा का काढ़ा, गुडुची और ये लेप रात को पसलियों पर लगाना। उन्होंने ताड़पत्र उसे थमा दिया। तीन दिन विश्राम, उन्होंने स्पष्ट कहा, अखाड़ा नहीं, भारी अभ्यास नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरुदेव ने उसे एक क्षण और देखा, फिर धीमे स्वर में पूछा, कल क्या हुआ था? प्रश्न सीधा था। अर्जुन ने उत्तर देने में विलंब नहीं किया, अभ्यास। गुरुदेव की आंखें क्षणभर उसके चेहरे पर टिकी रहीं, फिर बोले, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने उसकी नाभि के नीचे हल्का स्पर्श किया। अर्जुन का भीतर का केंद्र क्षणभर जागा, पर उसने उसे स्थिर रखा। गुरुदेव ने हाथ हटाया, उनकी आंखों में हल्की जिज्ञासा थी। असामान्य उष्णता है, उन्होंने कहा, पर रोगजन्य नहीं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस ताड़पत्र पर अंतिम रेखा खींची। तुम अपने गुरुकुल के निवास क्षेत्र में जा सकते हो, उन्होंने कहा, यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा कक्ष विश्राम स्थल नहीं है, स्वर कठोर नहीं था, बस तथ्य। अर्जुन ने धीरे धीरे पलंग से पैर नीचे रखे, जमीन ठंडी थी, शरीर अब भी भारी था, पर संतुलन पहले से बेहतर। उसने आसपास देखा, एक कोने में एक नगर की वृद्धा लेटी थी, पास में उसकी पोती बैठी थी, दूसरी ओर एक शिष्य अपने हाथ पर पट्टी बांधवा रहा था, चेहरे पर दर्द से अधिक लज्जा। जीवन यहां बह रहा था, दर्द, उपचार, आशा। अर्जुन ने ताड़पत्र उठाया, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। गलियारे में पहुंचते ही हवा अलग लगी, बाहर दिन पूर्ण रूप से जाग चुका था, गुरुकुल का प्रांगण जीवित था। कहीं से श्लोक पाठ की ध्वनि आ रही थी, कहीं लकड़ी के डंडों के टकराने की। कुछ शिष्य उसे देखकर रुक गए, नजरें बदली, फुसफुसाहट, वही है जिसने वीरेंद्र को गिराया, सुना है उसकी बांह टूट गई। अर्जुन ने किसी की ओर नहीं देखा, वह धीरे धीरे निवास क्षेत्र की ओर बढ़ा। भीतर मूलाधार की रेखा शांत थी, पर अब उसे एक और अनुभूति हो रही थी, जैसे किसी दूर स्थान से कोई दृष्टि उस पर टिकी हो। वीरेंद्र का परिवार, आचार्य की चेतावनी, दुर्घटनाएं, उसने कदम धीमे नहीं किए, पर मन में स्पष्ट था, अब हर कदम देखा जाएगा और हर श्वास गिनी जाएगी। अंधस्को निवास क्षेत्र गुरुकुल के पश्चिमी कोने में था, पत्थर की लंबी इमारत, भीतर छोटे छोटे कक्ष, प्रत्येक में दो शिष्य रहते थे। अर्जुन अपने कक्ष तक पहुंचा, दरवाजा आधा खुला था, उसका सहनिवासी अभी अभ्यास में होगा। अंदर सादा कमरा, एक लकड़ी का पलंग, एक ताड़पत्र रखने की मेज, कोने में जल का घड़ा, दीवार पर टंगा एक दीप। वो भीतर आया, दरवाजा बंद किया, धीरे से पलंग पर बैठ गया, कुछ क्षण तक बस श्वास को सामान्य होने दिया। शरीर अभी भी दर्द से भरा था, पसलियां भारी, कंधा जकड़ा हुआ, पर यह विश्राम का समय था। उसने ताड़पत्र एक और रखा, आंखें बंद की, पहले श्वास धीमी संतुलित, फिर ध्यान भीतर नाभि के नीचे, मणिपुर से नीचे उतरते हुए मूलाधार, वहां अब भी अधखुला द्वार, टूटी हुई नाड़ियां, जली हुई पथिकाएं, जैसे किसी ने भीतर आग लगाकर मार्ग नष्ट कर दिए हों। वो धीरे धीरे नाड़ियों को देखने लगा, उनके किनारे खुरदरे थे, प्रवाह रुक रुक कर चलता, पर आज कुछ अलग था। उसने और गहराई में देखा। बहुत सूक्ष्म स्तर पर, और तभी उसे वह दिखाई दिया, काली अग्नि का एक सूक्ष्म कण, फिर दूसरा, जैसे अंधकार में जुगनू, पर ये प्रकाश नहीं थे, ये दहन के बीज थे, हेवनली ब्लैक फ्लेम के सूक्ष्म अंश। उसका हृदय एक धड़कन के लिए तेज हुआ, वह और गहराई में गया और वहां उसे कुछ और दिखाई दिया, जैसे जली हुई भूमि के नीचे छुपी जड़ें, पतली काली धड़कती हुई हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ें। वो स्थिर हो गया, यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ, उसने सावधानी से उस जड़ को छूने का प्रयास किया, स्पर्श नहीं, केवल अनुभव, जड़ जीवित थी, नष्ट नहीं हुई थी, और वह टूटी हुई नाड़ियों के किनारों से जुड़ सकती थी। एक संभावना, यदि वह इन जड़ों का उपयोग करे, इस प्रकार वह अपनी संपूर्ण नाड़ी प्रणाली का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो सकता है, और साधारण नहीं, अधिक सशक्त, अधिक शुद्ध, जहां नाड़ी होनी चाहिए वहां वह हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ को स्थायी मार्ग बना सकता है। उसकी सांस हल्की तेज हुई, यह अवसर था, पर साथ ही विनाश का द्वार। उसने स्मृति को टटोला, हेवनली ब्लैक फ्लेम, निषिद्ध ज्ञान, क्यों? क्योंकि यह साधारण अग्नि नहीं थी, यह वही अग्नि थी जिससे देवताओं ने दिव्यास्त्र गढ़े थे, जिसे नियंत्रित कर कोई भी मानव देवत्व की दिशा में छलांग लगा सकता था, और इसी कारण इसे प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि यदि हर कोई दिव्यास्त्र बना सके तो संसार संतुलन खो देगा। इतिहास बहुत पुराना, जब दानवों ने पृथ्वी लोक पर अधिकार कर लिया था, मानव नगर जल रहे थे, राज्य गिर रहे थे, और तब 108 ऋषियों ने एकत्र होकर संकल्प लिया। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति, तप और जीवन का बलिदान दिया एक यज्ञ में। उस यज्ञ से उत्पन्न हुई हेवनली ब्लैक फ्लेम, अंधेरी पर दिव्य, उस अग्नि को देवताओं ने अपनाया, उससे दिव्यास्त्र बनाए, और उन्हीं दिव्यास्त्रों से दानवों को पराजित किया गया। पृथ्वी पर पुनः शांति आई, पर उस दिन के बाद ये ज्ञान बंद कर दिया गया, निषिद्ध, क्योंकि 108 ऋषियों का बलिदान फिर संभव नहीं था, और कोई भी साधारण साधक यदि इसे जगाने की कोशिश करे तो वह या तो भस्म हो जाएगा, या पागल, या संसार को जला देगा। अर्जुन ने धीरे से श्वास छोड़ी, उसके सामने विकल्प था, वह जड़ों का उपयोग कर सकता है, नाड़ियां पुनर्निर्मित कर सकता है, पर यदि यह अग्नि बाहर प्रकट हुई तो गुरुकुल ही नहीं, पूरे नगर में हलचल मच जाएगी, और यदि देववंश के लोग जान गए तो उसे जीवित नहीं रहने देंगे, क्योंकि अब कोई नया दिव्यास्त्र नहीं बनना चाहिए। उसने निर्णय लिया, अभी नहीं, वह हेवनली ब्लैक फ्लेम को सीधा उपयोग नहीं करेगा, न उसे बाहर लाएगा, न उससे नाड़ी जलाएगा, वह पहले अपनी साधना विकसित करेगा, अपना चक्र स्वयं निर्मित करेगा, मूलाधार से प्रारंभ, पर इस बार साधारण ऊर्जा से नहीं, वह एक नया मार्ग बनाएगा, काली अग्नि को जड़ की तरह प्रयोग करेगा, पर सतह पर सामान्य प्राण का आवरण रखेगा, ताकि कोई पहचान न सके। उसने ध्यान केंद्रित किया मूलाधार के पास, एक बिंदु पर जहां नाड़ी टूटी थी, वहां उसने कल्पना नहीं, अनुभव किया, एक वृत्त धीरे धीरे घूमता हुआ। उसने श्वास ली, ऊर्जा उस वृत्त में लाए, फिर छोड़ी, फिर ली, धीरे धीरे वह बिंदु स्थिर हुआ, एक छोटा चक्र, कमजोर पर अस्तित्व में। उसने आंखें नहीं खोली, मन में स्पष्ट संकल्प था, इस जन्म में वह केवल जीवित नहीं रहेगा, वह केवल शक्तिशाली नहीं बनेगा, वह देवत्व की ओर जाएगा। पहले देवता और दानव, सभी मानव थे, ज्ञान ने उन्हें ऊंचा उठाया, तो फिर क्यों नहीं वह, क्यों नहीं इस जन्म में वह स्वयं देव बने, पर इस बार दिव्यास्त्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति को भीतर धारण करने के लिए। अचानक उसे मूलाधार के पास हल्की गर्मी महसूस हुई, न तेज, न खतरनाक, बस जैसे बीज मिट्टी में जड़ पकड़ रहा हो। हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ उसके बनाए छोटे चक्र के चारों ओर लिप गई, धीरे, संतुलित, जैसे उसे स्वीकार कर रही हो। उसने तुरंत प्रवाह रोक दिया, अधिक नहीं, आज के लिए इतना पर्याप्त था, यदि वह लालची हुआ तो देह सहन नहीं करेगी। उसने आंखें खोली, कमरा शांत था, बाहर कहीं से शंख की हल्की ध्वनि आ रही थी, शाम होने लगी थी। उसने हथेली देखी, हल्की कंपन, पर भीतर एक नया केंद्र जन्म ले चुका था, छोटा, अधूरा, पर वास्तविक। उसने धीमे स्वर में स्वयं से कहा, इस जन्म में मैं देव बनूंगा। और पहली बार काली अग्नि ने भीतर से प्रतिक्रिया दी, जैसे उसने सुन लिया हो। अंडस्को अर्जुन ने जैसे ही आंखें खोली, कमरे में संध्या उतर चुकी थी, दीपक बुझा नहीं था, पर लौ छोटी हो गई थी। वो कुछ क्षण स्थिर बैठा रहा, भीतर का छोटा चक्र शांत था, हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ें स्थिर, नियंत्रित। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी और उसकी दृष्टि मेज पर रखे एक मुड़े हुए ताड़पत्र पर पड़ी। ताड़पत्र पर उसका नाम लिखा था, रेखा पहचान में आई, उसके सहनिवासी की लिखावट। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, धीरे से खोला, संक्षिप्त पत्र था, अर्जुन, अचानक घर से संदेश आया है, कुछ आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए गांव जा रहा हूं, कब लौटूंगा निश्चित नहीं, ध्यान रखना, बस इतना, न कोई विशेष भावना, न कोई विस्तार। अर्जुन कुछ क्षण पत्र को देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की लगभग अदृश्य मुस्कान आए। वो भीतर ही भीतर हंस पड़ा, अचानक कार्य, गांव जाना। उसने पत्र मोड़कर वापस मेज पर रख दिया, उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए था। वीरेंद्र की हड्डियां टूटी थीं और यह बात पूरे गुरुकुल में फैल चुकी थी। जो भी उसके निकट होगा संदेह के घेरे में आएगा, यदि वीरेंद्र का परिवार बदला लेने की योजना बनाए तो पहले वे उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाएंगे, डर फैलाने के लिए या सूचना पाने के लिए। उसका सहनिवासी काया नहीं था, पर मूर्ख भी नहीं। वह जानता था अभी अर्जुन के पास रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने दूरी बना ली। समझदारी है, अर्जुन ने मन में सोचा, या स्वार्थ, दोनों में अंतर सूक्ष्म होता है। उसने कल्पना की, अभी वो संभवतः नगर के किसी किराए के कक्ष में होगा, आराम से प्रतीक्षा में, जब तक ये तूफान गुजर ना जाए, और यदि अर्जुन पर कुछ घटित हो जाए तो वो सुरक्षित रहेगा। अर्जुन को उस पर क्रोध नहीं आया, ये स्वाभाविक था। मनुष्य पहले अपने प्राण बचाता है, देव बनने की इच्छा रखने वाला ही स्वयं को अग्नि में डालता है। कमरा अब पुनर्तः उसका था, एकांत, और यह एकांत अवसर भी था, पर साथ ही अधिक असुरक्षित। यदि कोई रात में आए तो कोई साक्षी नहीं, कोई सहायक नहीं। अर्जुन उठकर दरवाजे तक गया, कुंडी जांची, मजबूत की, खिड़की से बाहर देखा। निवास क्षेत्र सामान्य दिख रहा था। कुछ शिष्य जल भर रहे थे, कुछ अभ्यास से लौट रहे थे, पर उसे महसूस हो रहा था दृष्टियां बदल गई हैं। अब वह केवल कमजोर अर्जुन नहीं था, वो शिष्य था जिसने वीरेंद्र को गिराया। और ऐसे लोग या तो मित्र बनाए जाते हैं या समाप्त, बीच का स्थान नहीं होता। वो वापस पलंग पर बैठ गया, आंखें बंद की, भीतर गया। मूलाधार का चक्र अभी छोटा था, कमजोर, पर अब उसके चारों ओर हेवनली ब्लैक फ्लेम की जड़ें जमी थीं, जैसे वृक्ष की पहली पकड़। उसने सावधानी से जांच की, नाड़ियों के टूटे भाग अब सीधे नहीं थे, पर जहां जड़ें छूती वहां एक नई परत बनती, जैसे काला पर पारदर्शी मार्ग। यदि वो समय ले, धैर्य रखे, तो वह पूरी नाड़ी प्रणाली पुनः निर्मित कर सकता है, और वह भी सामान्य से अधिक सुदृढ़, पर खतरा भी उतना ही बड़ा। यदि कभी यह अग्नि अनियंत्रित हुई तो उसके भीतर ही विस्फोट होगा। अचानक उसे आचार्य ध्रुव के शब्द याद आए, जो तू भीतर छिपा रहा है उसे नियंत्रित करना सीख। अर्जुन ने आंखें खोली, कमरे में अंधेरा गहरा हो चुका था। उसने दीपक जलाया, लौ स्थिर हुई। उसने धीरे से कहा, वीरेंद्र का परिवार, वे सीधे हमला नहीं करेंगे, पहले दबाव, पहले चेतावनी, पहले अलगाव, फिर वार, और यदि वे गुरुकुल के भीतर नहीं कर सके तो बाहर। इसलिए आचार्य ने उसे बाहर न जाने को कहा था। गुरुकुल के भीतर मर्यादा थी, पर मर्यादा हमेशा ढाल नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ा भ्रम होती है। उसने निर्णय लिया, वो प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो भय में नहीं रहेगा, पर जल्दबाजी भी नहीं करेगा। अगले तीन दिन वह केवल एक कार्य करेगा, मूलाधार को स्थिर करना, चक्र को सुदृढ़ करना, नाड़ी की जड़ों को फैलाना धीरे, बिना किसी बाहरी संकेत के, ताकि कोई उसकी ऊर्जा में असामान्य परिवर्तन न देख सके। वो फिर से ध्यान में बैठा, इस बार और गहराई से हेवनली ब्लैक फ्लेम को छुआ नहीं, बस उसकी जड़ों के चारों ओर प्राण प्रवाहित किया धीरे धीरे। उसे लगा जैसे भीतर कोई संरचना आकार ले रही हो, एक वृत्त, फिर उसके चारों ओर दूसरा, जैसे कमल की पहली दो पंखुड़ियां। मूलाधार चक्र अभी अपूर्ण पर जन्म ले चुका। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आए। वे सोचते हैं मैं शिकार हूं, उसने मन में कहा, उन्हें नहीं पता बीज रोपा जा चुका है। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आए। अर्जुन ने आंखें नहीं खोली, पर उसके भीतर काली जड़ें और गहरी हो गईं। अंडस्कोर रात गहरी हो चुकी थी। गुरुकुल का निवास क्षेत्र बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, पर उस शांति के भीतर असंख्य धड़कने, आशंकाएं और छिपे हुए संकल्प जाग रहे थे। अर्जुन के कक्ष में दीपक की लौ बहुत धीमी कर दी गई थी, खिड़की आधी खुली थी जिससे शीतल हवा भीतर आ रही थी। कमरे में अब एक अजीब सी खालीपन की गूंज थी, उसके सहनिवासी के जाने के बाद जैसे दीवारों ने भी दूरी बना ली हो। मेज पर पड़ा वो पत्र अभी भी वहीं था, जिसे पढ़कर वह भीतर ही भीतर मुस्कुराया था। मुझे कुछ आवश्यक कार्य से गांव जाना है, अर्जुन ने पत्र को मोड़कर एक ओर रख दिया था। उसे भलीभांति पता था कि यह आवश्यक कार्य वास्तव में भय था। वीरेंद्र की टूटी हुई हड्डियां, उसका अपमान और उसके कुल का क्रोध, ये सब बातें आग की तरह पूरे गुरुकुल में फैल चुकी थीं। उसका सहनिवासी समझदार था, वो उस आग की लपटों में फंसना नहीं चाहता था। लेकिन अर्जुन वह अब भय से परे जा चुका था। वह अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठा था, आंखें बंद, श्वास लंबी और नियंत्रित। उसके भीतर एक अदृश्य प्रक्रिया चल रही थी, टूटी हुई नाड़ियों के अवशेष, क्षीण ऊर्जा मार्ग और उन सबके बीच कहीं गहराई में चमकता हुआ वह सूक्ष्म काला प्रकाश, स्वर्गीय काली ज्वाला का अंश, उसने उसे छुआ नहीं था, पर वह जानता था वह वहां है, जैसे किसी प्राचीन बीज की जड़ें उसकी आत्मा में उतर चुकी हों। उसकी चेतना मूलाधार की ओर गई, अभी भी पुनर्तः नहीं खुला। टूटी हुई नाड़ियों के टुकड़े, कुछ जगहों पर जले हुए, कुछ स्थानों पर बिखरे हुए, उसने श्वास रोकी, फिर धीरे धीरे छोड़ी। वह उस काली जड़ को बुला सकता था, यदि वह चाहे तो उसी जड़ से वह अपनी पूरी नाड़ी प्रणाली पुनर्निर्मित कर सकता था, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। पर उसने मना कर दिया था, क्योंकि वह जानता था स्वर्गीय काली ज्वाला साधारण ऊर्जा नहीं थी, देवताओं के दिव्यास्त्र उसी से बने थे। वही ज्वाला जिसने दानवों के विरुद्ध युद्ध में संतुलन बदला था, वही ज्वाला जिसे 108 ऋषियों ने अपने प्राण देकर उत्पन्न किया था। वह ज्ञान निषिद्ध था, गुरुकुल में उसके नाम का उच्चारण भी वर्जित था। कहा जाता था जो इसे साधना चाहेगा वह या तो पागल हो जाएगा या भस्म। अर्जुन ने निर्णय लिया था, वह इसे सीधे उपयोग नहीं करेगा, वह अपने मार्ग स्वयं निर्मित करेगा, वह चक्रों का निर्माण स्वयं करेगा। इस जन्म में वह केवल एक योद्धा नहीं, एक देवत्व की ओर अग्रसर साधक बनना चाहता था। उसी समय दरवाजे के पास एक अत्यंत हल्की सी आहट हुई। यदि कोई सामान्य विद्यार्थी होता तो वह शायद सोया रहता, पर अर्जुन की चेतना गहन साधना में भी बाहर की सूक्ष्म हलचलों को पकड़ रही थी। उसकी श्वास ज्यों की त्यों रही, पर उसकी जागरूकता दरवाजे तक फैल गई। किवाड़ बहुत धीरे धीरे सरका, कोई भीतर आया, पग इतने हल्के कि जैसे हवा चल रही हो, पर वह हवा नहीं थी, वह उपस्थिति सजीव थी। स्त्री सुगंध, हल्की सी चंदन और केसर की मिली जुली महक। माधवी, वह कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ क्षणों तक वह चुपचाप खड़ी रही, उसकी दृष्टि कमरे पर घूमी, खाली दूसरा बिस्तर, मुड़ा हुआ पत्र, बुझती लौ, और फिर उसकी दृष्टि अर्जुन पर स्थिर हो गई। अर्जुन के चारों ओर ऊर्जा की अत्यंत सूक्ष्म तरंगें थीं। साधारण नेत्र उन्हें नहीं देख सकते थे, पर माधवी साधारण नहीं थी, वह नाड़ी संवेदना में पारंगत थी। उसने आंखें बंद की और अनुभव किया। यह क्या, उसने मन ही मन सोचा। अर्जुन के भीतर टूटी हुई नाड़ियों के स्थान पर कोई धीमा सा पुनर्गठन चल रहा था, जैसे कोई जड़ भीतर ही भीतर फैल रही हो। यह सामान्य उपचार नहीं था, यह न तो औषधि का प्रभाव था, न ही साधारण ध्यान का। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम सो नहीं रहे हो अर्जुन, उसकी आवाज धीमी थी पर स्पष्ट। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली, उसकी दृष्टि स्थिर थी। तुम भी चुपचाप आना नहीं छोड़ोगी माधवी? माधवी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। दरवाजा बंद नहीं था। और तुमने सोचा कि आधी रात को एक विद्यार्थी के कक्ष में प्रवेश करना उचित है? वो भी एक पुरुष विद्यार्थी, यदि वो विद्यार्थी स्वयं अपने भीतर तूफान जगा रहा हो तो? हाँ। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। माधवी ने फिर आंखें बंद की। तुम चक्र निर्माण का प्रयास कर रहे हो? अर्जुन चुप रहा। तुम्हारी नाड़ियां टूटी हुई हैं, तुम्हें अभी विश्राम करना चाहिए, पर तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संकेंद्रण हो रहा है, ये सामान्य नहीं है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं केवल अपने मार्ग को ठीक कर रहा हूँ। नहीं, माधवी ने सिर हिलाया, तुम उसे बदल रहे हो। वो उसके सामने आकर बैठ गई। अर्जुन, मैं नाड़ी नियंत्रण का एक अभ्यास जानती हूँ, यह मेरे कुल की विशेष विधि है। इससे टूटी हुई नाड़ियों को बिना बाहरी ऊर्जा के पुनः जोड़ा जा सकता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वह प्रस्ताव साधारण नहीं था। नाड़ी नियंत्रण किसी भी साधक के लिए आधार था, यदि वह इसे सीख लेता तो उसका मार्ग सरल हो सकता था, और माधवी वो उसकी शत्रु नहीं थी, कम से कम अभी तक तो नहीं। पर अर्जुन ने सिर हिला दिया, नहीं। माधवी की भौहें तन गईं, क्यों? क्योंकि जो मैं बना रहा हूं वह किसी और की विधि से नहीं बन सकता। अहंकार, उसने हल्का सा कटाक्ष किया, नहीं चयन। माधवी कुछ क्षण उसे देखती रही, तुम्हें पता है ना वीरेंद्र का परिवार शांत नहीं बैठेगा, मुझे चेतावनी मिल चुकी है, तो तुम समझते क्यों नहीं? यदि तुम्हारी नाड़ियां अभी भी अस्थिर हैं तो तुम अगला आक्रमण नहीं झेल पाओगे। अर्जुन की दृष्टि एक पल के लिए गहरी हो गई। जो आक्रमण भीतर से आता है वही सबसे घातक होता है, बाहर का शत्रु तो केवल परीक्षा है। माधवी ने उसकी ऊर्जा को फिर से परखा, इस बार उसे कुछ और महसूस हुआ, एक अत्यंत सूक्ष्म पर अत्यंत घना केंद्र, जैसे काले रंग का कोई बीज। उसके मन में एक क्षण के लिए भय सा कोहरा, तुम किस ऊर्जा को छू रहे हो अर्जुन? उसकी आवाज अब पहले जैसी स्थिर नहीं थी। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। माधवी उठ खड़ी हुई, ठीक है, यदि तुम मेरी सहायता नहीं चाहते तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगी, पर सावधान रहो, कुछ शक्तियां साधक को चुनती नहीं, उसे भस्म कर देती हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, फिर एक क्षण को रुकी, और एक बात उसने पीछे मुड़े बिना कहा, तुम्हारा सह निवासी केवल भय से नहीं गया है, किसी ने उसे संकेत दिया था। अर्जुन की आंखों में एक चमक आई, किसने, ये तुम्हें स्वयं जानना होगा। इतना कहकर माधवी बाहर चली गई। दरवाजा फिर से धीरे से बंद हो गया। कमरे में पुनः शांति लौट आई, पर अब वह पहले जैसी नहीं थी। अर्जुन ने आंखें बंद की, पर इस बार उसका मन स्थिर नहीं था। किसी ने उसके सह निवासी को संकेत दिया था, इसका अर्थ था वीरेंद्र का परिवार केवल बल से नहीं बुद्धि से भी काम ले रहा था। उसने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया, काला बीज हल्का सा धड़क रहा था।
मैं तुम्हें उपयोग नहीं करूंगा,
उसने मन ही मन कहा, पर तुम्हें दबाकर भी नहीं रखूंगा, मैं अपना चक्र स्वयं बनाऊंगा। उसने श्वास भीतर खींची, मूलाधार पर ध्यान केंद्रित किया। टूटी हुई नाड़ियों के बीच उसने अपनी ही ऊर्जा की एक पतली रेखा बनाई, जैसे कोई नदी नया मार्ग खोज रही हो। वह काली जड़ को केवल आधार की तरह देख रहा था, स्रोत की तरह नहीं। धीरे धीरे एक नया केंद्र बनने लगा। उसी समय गुरुकुल के दूसरे छोर पर अपने कक्ष में आचार्य ध्रुव ध्यान में लीन थे। उनकी चेतना विस्तृत थी, वे केवल अपने श्वास पर नहीं पूरे गुरुकुल की ऊर्जा धाराओं पर दृष्टि रखे हुए थे। प्रत्येक विद्यार्थी की आभा उनके लिए एक दीपक की तरह थी, कुछ स्थिर, कुछ डगमगाते हुए।
अचानक एक दीपक की लौ में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, बहुत सूक्ष्म, इतना कि साधारण साधक उसे न देख पाता, पर आचार्य ध्रुव ने देखा।
ये उनकी भौहें सिकुड़ी, वो अर्जुन की ऊर्जा थी। वहां कोई बाहरी विस्फोट नहीं था, न ही असामान्य उछाल, पर एक अत्यंत घना बिंदु बन रहा था, जैसे शून्य स्वयं आकार ले रहा हो।
ध्रुव ने ध्यान और गहरा किया। तुम क्या कर रहे हो बालक, उनके होठों से धीमा स्वर निकला। उन्हें चेतावनी याद थी, स्वर्गीय काली ज्वाला निषिद्ध थी, यदि उसका अंश भी किसी विद्यार्थी के भीतर सक्रिय हो जाए तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। पर जो वे देख रहे थे वह सीधा उपयोग नहीं था, वह पुनर्निर्माण था, एक नई संरचना।
आचार्य ध्रुव की आंखें खुली। यह मार्ग साधारण नहीं है, उन्होंने सोचा, यदि यह सफल हुआ तो, और यदि असफल। वो उठे नहीं, उन्होंने हस्तक्षेप भी नहीं किया, क्योंकि कभी कभी गुरु का कर्तव्य रोकना नहीं देखना होता है।
उधर अर्जुन के कक्ष में रात बीत रही थी। नई नाड़ी की पहली रेखा स्थिर हो चुकी थी, अभी वह अत्यंत पतली थी पर जीवित थी। उसके चारों ओर ऊर्जा घूम रही थी। मूलाधार के समीप एक हल्की सी स्पंदन लहर उठी। अर्जुन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, पहला कदम, पर उसे पता नहीं था गुरुकुल की दीवारों के बाहर अंधेरे में कुछ और भी जाग रहा था। वीरेंद्र का परिवार मौन नहीं था, और अब जब अर्जुन की ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन आ चुका था